Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramashatthaya Pratasmaraniyo Prempuri Adhyatma Mandal ke Adishthata महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तथा परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए भगवान की कथा का आनंद लेने वाले भगवान के परम श्रोतागण साधकगण, कठोपनिषद हमारे प्रस्थान त्रय का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे वेदांत ने, हमारे मनुष्यों ने मानवीय जीवन के सर्वांगीण उत्थान के लिए एक ऐसे प्रतिष्ठान की स्थापना कर दी जिसको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां से हम अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, और प्रस्थान शब्द का अर्थ निकल पड़ना भी होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि हम प्रस्थान कर रहे हैं, माने आप निकल रहे हैं, आप अध्यात्म की ओर प्रारंभ करना चाहते हैं, आप अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपका प्रस्थान क्या है। जैसे एक क्रिया प्रस्थान, आप चल रहे हैं तो आपकी क्रिया आपका प्रस्थान है। आप कहते हैं कि हम प्रस्थान कर रहे हैं, माने आप चल रहे हैं, तो वहां क्रिया को ही प्रस्थान कहा जाता है, चलने को ही प्रस्थान कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म में जहां प्रस्थान कहा है, ये प्रस्थान माने क्या है? यहां प्रस्थान ज्ञानात्मक है। आपको अध्यात्म में चलना है, आपको आगे बढ़ना है, तो प्रस्थान यहां ज्ञानात्मक है। जैसे आप यहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो आप प्रस्थान कर रहे हैं कि आप एक जगह पर स्थिर हैं। आप यहां सत्संग श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो आप चल रहे हैं कि रुक रहे हैं? आप रुके हुए थोड़ी हैं। आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, माने आप चल रहे हैं, आप अध्यात्म की यात्रा पर चल रहे हैं। आपका ये प्रस्थान है, ये ज्ञानात्मक है, और इसी को प्रस्थान कहते हैं। और यहां तीन प्रकार के प्रस्थान हैं। एक श्रौत प्रस्थान, जैसे आपके 10 उपनिषद हैं, ईश केन कठ छांदोग्य मांडुक्य बृहदारण्यक आदि 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 आपके 10 उपनिषद हैं। और ये 10 उपनिषद श्रौत प्रस्थान इसको कहा जाता है। श्रौत माने श्रुति, आपने श्रवण किया था ना। श्रूयते अपितु केनापि न क्रियते इति अनुश्रविको वेदः, ये किसी ने किया नहीं है, केवल सुना गया है, हमारे ऋषियों ने भी सुना, और सुनने के बाद फिर वो आप तक पहुंचा दिया, बस। इसीलिए इसको कहते हैं श्रुति, और इसी को वेद कहते हैं। और ये श्रौत प्रस्थान आपके हैं, ये 10 उपनिषद है, और आपके इन्हीं 10 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है। और दूसरा स्मार्त प्रतिष्ठान है, जैसे ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं, और महर्षि वेद व्यास ने इसको रचा है, लेकिन इसको हम स्मार्त प्रतिष्ठान बोलते हैं। स्मार्त माने स्मृति है। महर्षि वेद व्यास जी महाराज जी ने इसका लिखान किया, इसके लेखक रचनाकार हैं। और तीसरा जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। आप इसको ध्यान रखना चाहिए, आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपके ये तीन प्रस्थानत्री के प्रमुख ग्रंथ हैं, 10 उपनिषदे, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता के बारे में तो आप श्रवण करते रहते हैं, ये वेदांत की प्रस्थानत्री हैं। आप जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको ये तीन ग्रंथ हैं। आपके सामने मेरा एक प्रश्न है कि आप जाना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं। आपके वेदांत में आप जाना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं? वस्तुतः यहां कहीं जाना नहीं है, यहां तो केवल जानना है। आपको जाना और जा करके यदि पाना होगा तो बहुत दूर होगा कहीं, और वो दूसरे देश में होगा। फिर आप अमरावती जा रहे हैं तो आप अमरावती यहां थोड़ी है, आपको अमरावती को जाना है तो ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, वो दूसरे देश में है। आप वहां जाके जा सकते हैं, वहां आप जान के नहीं जा सकते हैं, वहां जाना पड़ेगा, वहां क्रिया है, वहां जाना क्रिया सापेक्ष है, वहां दूसरे देश में है। और जो वस्तु दूसरे देश में होती है ना, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपका और उस वस्तु के बीच का जो व्यवधान है उसको काटना पड़ेगा। वहां देश की दूरी है, वो दूर देश में देश की दूरी काटने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी, और जहां क्रिया करनी पड़ती है वहां समय की अपेक्षा होती है, समय सापेक्ष है। आपको 2-4 घंटे तो लगेंगे, समय सापेक्ष है क्योंकि दूसरे देश में, और वो फिर अन्य रूप में होगा, किसी अन्य वस्तु के रूप में होगा, आपसे भिन्न होगा। और वेदांत का जो लक्ष्य है वो ऐसा नहीं है। वेदांत का जो लक्ष्य है, वेदांत का जो मोक्ष है, वेदांत का जो प्रयोजन है, हमारी साधना का प्रयोजन, वैसा नहीं कि दूर देश में जाके आपको मिले, आपको दूसरे काल में मिल जाए, आपको दूसरी वस्तु के रूप में मिले, अनात्मा के रूप में मिले। इसलिए आपको यह भगवान कहते हैं ना भाई, यही यही इसी देश में, इसी काल में और इसी आपके ही रूप में। इसलिए आपको ऐसे आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो आपको जाना है कि केवल जानना है? आपको जाना नहीं है, यहां केवल आपको जानना है, आपको यथा तथ्य जानना है, और यहां जानना ही पाना है। आप ध्यान देना, हाँ, यहां जानना ही क्या है, पाना है। लेकिन आप एक बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां जो जानने का जो अर्थ है ना, कुछ अलग है। भगवान ने कहा शुद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिलता है। भगवान कहते हैं ना, जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिलता है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ज्ञान के लिए श्रद्धा की क्या जरूरत है? आप जब मेरा प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, अथवा आप महाराज श्री के प्रवचन श्रवण करते हैं, आपकी श्रद्धा हो कि ना हो, आप जब श्रवण करते हैं तो आपको ज्ञान होता है कि नहीं? आंख का स्वभाव है, श्रद्धा आप करो कि ना करो, आप जिसको देखते हैं उसका ज्ञान हो जाता है। आप श्रद्धा करो कि ना करो, कान से जिससे सुनते हैं उसका ज्ञान हो जाता है। इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियों के सामने से जो वस्तु गुजरती है, इंद्रियां उस वस्तु को दिखा देती हैं, चाहे उसके प्रति आपकी श्रद्धा हो चाहे ना हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, इसका मतलब क्या है? यहां ज्ञान का मतलब केवल जानकारी के अर्थ में नहीं है, यहां ज्ञान का मतलब है आचरण के अर्थ में। आपने सुना तत्वमसी, आपने सुना क्रोध नहीं करना चाहिए, ये किसको ज्ञान नहीं है? आपको पूछता हूं, बताइए आप किसको ज्ञान नहीं है? क्रोध नहीं करना चाहिए, ये किसको ज्ञान नहीं है? सब सबको ज्ञान है, लेकिन कौन क्रोध नहीं करता है? किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, ये किसको ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है। अच्छा मैं आपको पूछता हूं कि आप आत्मा है शरीर नहीं है, ये आपको ज्ञान है कि नहीं है? हाँ सब जानते हैं। जब दूसरे को हम उपदेश करने लगते हैं तो बोलते हैं भैया कि आप शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप आप आत्मा है, ज्ञान है कि नहीं? लेकिन ये ज्ञान कब तक है? जब तक दूसरी को आपको कहना तब तक, और उसके बाद फिर अपना ज्ञान अपने लिए काम का नहीं है। हम शरीर में रहते हैं और उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम आत्मा है, हम ब्रह्म है, क्या इसको आप ज्ञान बोलोगे? इसलिए यदतोन्यथा अज्ञानम यदतोन्यथा, वस्तुतः इसका जानना भी हमारा अज्ञान ही है, ये जानना जानना है ही नहीं। आप क्रोध करना गलत है, ये आप समझते फिर भी क्रोध कर रहे, इसका मतलब आप समझते नहीं है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता, ज्ञान हमारे जीवन का अनुकरण बनता है, आप ध्यान देना, ज्ञान जैसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। ज्ञान आपके जीवन का अनुकरण बनता है, जैसे मैं उदाहरण में आपको समझाता हूं, आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय आपको मालूम पड़ा कि इस भोजन में जहर मिला हुआ है, आपको ज्ञान हुआ, आपको किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने आपको बताया कि इसमें जहर है, तो मैं आपको पूछता हूं कि ज्ञान होने के बाद आप उस भोजन को खाएंगे कि नहीं? उसके बाद फिर आप उसका त्याग कर देंगे क्योंकि ज्ञान हुआ आपको, आपको मालूम पड़ा कि ये चीज आप खाने से मर जाए, ये चीज आप यदि करेंगे तो आपको आपको मालूम पड़ा कि आप मर जाएंगे, तो आपको नींद बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छा सोना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि तुम सोओगे तो मर जाओगे, तो आप सोएंगे? आप एक दो आदमी बगल में बैठा देंगे, एक दो बोले हिलाते रहो, सोने जाऊं गलती से सोने जाऊं? एक बार आपको ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान जीवन बन जाता है, और इसलिए हमारे शास्त्र ने ज्ञान का भेद कर दिया, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। लेकिन आप एक तीसरी भी ज्ञान की आप यहां विभाजन रेखा खींचिए, एक तीसरा भी आपात ज्ञान, जैसे मैं आपको इसको सहज सरल शब्दों में कहता हूं, जानकारी, मान्यता और अनुभूति। जानकारी का मतलब होता है बहुत ऐसी हल्की फुल्की बातें हम सुन लेते हैं, बौद्धिक प्रतिभा है, आप बुद्धिमान हैं और आप सुनने के बाद आप जान लेते हैं, बहुत सारी बातें जान लेते हैं हम। अभी घाटकोपर में कोई माता है, बहुत बहुत ऊंची सत्संगी है, वेदांत का ऐसा श्रवण करती है, और वेदांत का श्रवण करते करते आंखें मूंद लेती हैं, ओ ब्रह्मज्ञानी की तरह स्थिति रहती है उसकी, और जब योग वाशिष्ठ पढ़ती है तो घंटों बैठी रहती हूं, वैसी को ऐसी बैठी रहती, और जब कभी अपने बेटे से वो बैंक बैलेंस की बात करती हैं तो उसका बेटा बोलता है कि मम्मी अरे तुम तो ब्रह्मज्ञान की बात करती हो फिर भी बैंक बैलेंस की चर्चा क्यों करती हो, तुमसे ज्यादा तो ब्रह्मज्ञानी मैं हूं, आप वो ज्यादा बुद्धिमान है। और वो मां को छोड़ने के लिए सत्संग में आता था, कभी कभी बैठता था, सुना और टेप कर लिया उसने, और बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलता, बोल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर, अरे मम्मी तुम दिन भर करती रहते हो, हमको तो करने की जरूरत नहीं है, हम तो जान लिए हैं। लेकिन उसको जानना नहीं कहते हैं, आपको केवल इन्फॉर्मेशन एक सूचना मिली है, वहां आपकी श्रद्धा नहीं है। जहां बहुत अधिक बुद्धिमत्ता होती है वहां बहुत सारी जानकारियां होती हैं, लेकिन वहां मान्यता नहीं होती, आप मानते नहीं है, केवल आप उसको जानते हैं सामान्य रूप से, और मान्यता श्रद्धा जन्य होती है। आपके भीतर जब श्रद्धा होती है तब आप उसको मानना शुरू करते हैं, आप उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। आपको गुरु ने कहा आपको इतना जप करना है, आपने मान लिया क्योंकि आपकी श्रद्धा है, और आप कोशिश करेंगे कि नहीं हम इसको अपने जीवन में उतारें। इसलिए मान्यता श्रद्धा जन्य, आप मानना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मानना शुरू कर देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। आप कभी कभी बैठ के आंख भर के चिंतन करते हैं कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, क्योंकि आप मानने लगे हैं, आप मान करके उसको अपने जीवन में उतारने लगे हैं। लेकिन नारायण उससे भी परी की एक चीज है जिसको अनुभूति बोलते हैं। आप जब अनुभूति में प्रवेश करते हैं ना, तो वहां आस्था की जरूरत नहीं है, वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं। श्रद्धा अप्रत्यक्ष वस्तु में होती है। श्रद्धा माने आपने देखा नहीं है, आपकी अनुभूति का वो विषय नहीं है, फिर भी आप स्वीकार कर रहे हैं, वहां श्रद्धा है। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, इसमें श्रद्धा है क्या? मैं सन्यासी के रूप में देख रहा, आप देख रहे कि नहीं मुझे? तो आपकी अनुभूति है कि आपकी श्रद्धा है? आपकी अनुभूति है, आपका प्रत्यक्ष, आपकी श्रद्धा थोड़ी है। लेकिन यदि आपको मुझे साधु मानना हो तो श्रद्धा चाहिए। आपको यदि एक शरीर के रूप में इस आकृति को यदि देखना है, वहां कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको साधु मानना है तो आपको श्रद्धा की जरूरत, अप्रत्यक्ष अर्थ में आपको श्रद्धा करनी पड़ती है। जो प्रत्यक्ष अर्थ है उसमें श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको अनुभूति हो जाती है परमात्मा की, तब वहां जाके कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहां ज्ञान का मतलब क्या है? मान्यता, मान लेना, श्रवण करने के बाद आपके जीवन में उतारना, उसको बोलते हैं यहां ज्ञान। ज्ञान का केवल अर्थ ये नहीं है आपने सुना और भुला दिया, आपने सुना और जीवन में नहीं उतरा, उसको ज्ञान नहीं बोलते। और ये जो ज्ञान है ना, ये हमारे जीवन में ये प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान आपने जाना और आपकी यात्रा का प्रारंभ हो गया। और यहां यात्रा का प्रारंभ माने कहीं जाना नहीं है, आप ध्यान दें, माने जहां है वहीं समझना है। आपको समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, ई है वह तैर्जित सर्वो येषाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कहते हैं वहां ब्रह्म स्थिता माने ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अब आप अपने आत्मा में स्थित हो गए, आत्मरत हो गए, वहां कहीं जाना आना नहीं है। इसलिए यहां प्रतिष्ठान शब्द का अर्थ, प्रस्थान्त्री शब्द का अर्थ है आपको यहां से जानने की प्रक्रिया का प्रारंभ करना चाहिए। ये आपके तीन है प्रस्थान त्रयी। और इस प्रस्थान त्रयी का महत्वपूर्ण ये रत्न है आपका कठोपनिषद। और कठोपनिषद में आपने श्रवण किया बहुत सारी बातें, आज मैं आपको बताऊंगा इसका मंगलाचरण क्या है। यहां मंगलाचरण प्रत्येक एक एक उपनिषद का एक एक मंगलाचरण, और इसका जो मंगलाचरण है आप प्रतिदिन बोलते हैं। आप ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। ये इतनी उच्च कोटि की प्रार्थना है, इसमें आप एक एक शब्दों के ऊपर, इनके वाक्यों के ऊपर जब आप गौर करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी ऊंची प्रार्थना है। और ये जो प्रार्थना है ना, ये गुरु और शिष्य के बीच की प्रार्थना है। यहां गुरु और शिष्य मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ओम सहना ववतु सह नव ववतु सह नव अवतु। यहां श्रुति कहती कि हम दोनों की सह नव है दो, और दोनों की साथ साथ अवतु माने आप रक्षा करो। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। तो यहां हम दो कौन है? यहां श्रुति कहती कि हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु हम दोनों का साथ साथ पालन करें। यहां रक्षा करना और पालन करने में अलग अलग अंतर है, आप बहुत ध्यान दे के सुनेंगे, क्योंकि आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन बोलते हैं। हम दोनों का साथ साथ पालन करें और हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। यहां दो जो है ना, यहां दो का मतलब दो। अब आप इसको आप जहां आप पति पत्नी मिलकर के प्रार्थना कर रहे हो तो आप उस समय मन में रखें ओम सहना भवतु हम दोनों की रक्षा करें। आप गुरु शिष्य हैं और गुरु शिष्य के रूप में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अर्थ क्या बनेगा? गुरु और शिष्य हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। आ नारायण, ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है, इतना उज्जवल संबंध दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथों में अथवा धर्म में गुरु शिष्य भाव नहीं है। एकमात्र ऐसा आपका धर्म है और आपके धर्म ग्रंथ हैं, वो शिष्य से ही शुरू हो जाते हैं। आपके जितने भी ग्रंथ हैं ना, करीब करीब सभी ग्रंथ आपके प्रश्न से शुरू होते हैं और उत्तर से समाप्त होते हैं। आप देखना, प्रश्न से प्रारंभ है आपके जितने भी ग्रंथ हैं। यहां श्रीमद् भगवद गीता या अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ है इसका। गीता का प्रारंभ ही प्रश्न से है और उत्तर भगवान की उत्तर से है। और इसीलिए ये ग्रंथ इतने स्वतंत्र हैं। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्याशितव्या। वेद कहते कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सुनो और सुनने के बाद अंधे की तरह मानो। नहीं 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 नहीं, आप अपने बुद्धि का उपयोग करो। ये प्रश्न है ना, यदि शिष्य आपको प्रश्न पूछ रहा है, माने उसको पूछने की स्वतंत्रता है। आपके धर्म में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है, आप पूछ सकते हैं ये भगवान है कि नहीं। आप ध्यान देना, ये आप इस्लाम में जाके यदि आप पूछोगे कि खुदा है कि नहीं, तो आपको खुदा के पास भेज देगा वो। बोले जाओ ऊपर का, वही जाके देख लो। आप बाइबल में जाके प्रश्न करोगे कि खुदा है कि नहीं, तो राम राम, वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो सीधा प्रहार समझेंगे खुदा के ऊपर, बाइबल के ऊपर, कुरान के ऊपर, उनके अपने धर्म के ऊपर। लेकिन एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है कि आप छाती ठोक के गुरु को पूछ सकते हैं कि नहीं, भगवान है कि नहीं, आप पूछ सकते हैं। आप भगवान के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। विवेकानंद जी महाराज राम कृष्ण परमहंस के पास गए और वहां जाकर के उन्हें छाती ठोक कर सबके बीच में जाके पूछा, बोले ईश्वर है कि नहीं, आप ये बताए पहले है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं जो नहीं है उसके ऊपर आप लोगों को पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। और जब ये प्रश्न सुना राम कृष्ण परमहंस ने, तो आपको मालूम है भैया कमजोर आदमी होता तो बोलता कि इसको भगाओ यहां से। ये नास्तिक कहां से आया? लेकिन मुस्कुराने लगे। रामकृष्ण परमहंस इतनी शक्ति है, और वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते उन्होंने कहा हाँ हाँ, बोले हाँ है हाँ। विवेकानंद जी ने कहा है नहीं, आपने देखा है क्या? तो पुनः मुस्कुरा करके रामकृष्ण परमहंस जी कहते हाँ हाँ, जैसे तुमसे बात करता हूं ना मैं, वैसे उससे बात करता हूं। और नारायण जब वो बोल रहे थे ना, तो वो परोक्ष नहीं था, वो प्रत्यक्ष अनुभूति थी। और उसके बाद आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी महाराज नतमस्तक हो गए, नतमस्तक। और उसी समय यदि विवेकानंद जी को मार भगाया होता, तो कभी आप विवेकानंद दुनिया को नहीं दे पाते। यह आपके धर्म की विशेषता है। और यहां नारायण इतनी प्रगाढ़ अनुभूति है कि आप ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहां ईश्वर को देखने वाले भी लोग हैं। जहां देखने वाले न हो, जहां केवल परोक्ष शास्त्र पर आधारित लोग हो, वहां पर प्रश्न पूछने से भय है। लेकिन यहां तो अनुभूति है। आप सुनेंगे कठोपनिषद में ही मालक नचिकेता ने आचार्य यम को भी यही प्रश्न पूछा है, बड़ा गंभीर प्रश्न। उन्होंने कहा अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके एतत् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम्। उन्होंने कहा कि कोई बोलते ईश्वर है और कोई, कुछ लोग बोलते ईश्वर नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं वो है कि नहीं, वो ईश्वर है भी कि नहीं, वो भगवान है भी कि नहीं। इसलिए नारायण आप प्रश्न करते हैं और संदेह के साथ प्रश्न करते हैं, तो शास्त्र कहता है कि जब आपको उत्तर दिया जाए तो आप कान खोल करके सुनना। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कहा और जबरदस्ती आप मान रहे हो बिना समझे, इसलिए आपको आपका शास्त्र आपको सावधान करता है। आत्मा वारे श्रोतव्यो, आत्मा को सुनो सुनो, और सुनने के बाद फिर आप मानना मत, मन से विचार करो। यहां श्रवण जो है ना कान से है, श्रवण तन से है, आपकी शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है श्रवण करने के लिए, और आपको मनन करना है ना तो शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं, आप मन मन से मनन कर रहे हैं। आप विचार करो जो आपने सुना है, जो आपने शास्त्र में सुना, सत्संग में सुना है, केवल मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, आप बैठ करके चिंतन करना वो सही है कि नहीं है, आप अपने तर्कों से, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको काम देता है, मेरा ज्ञान आपको काम नहीं देता है। आप मनन करो, मनन, और मनन करने के बाद एक तथ्य निश्चित कर लो, एक सत्य को निश्चित करो, और उसके बाद फिर निरिध्यासन, उस सत्य के ऊपर चलते जाना। निरिध्यासन का अर्थ है उस सत्य को जीवन में धारण करना, उसके ऊपर चल पड़ना, और उसके बाद फिर आत्मा वरे द्रष्टव्य, आत्मदर्शन, परमात्मा की प्राप्ति तो बाद में होगी, पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर उस पर चलो, और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति। आपके हिंदू धर्म की सर्वोच्च यही स्थिति है, यहां प्रश्न पूछने की भी स्वतंत्रता है, आप गुरु को चुप करने की भी स्वतंत्रता है, ध्यान देने का, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आप प्रश्न पूछिए गुरु को, वो चुप कर सकते कि नहीं? हाँ हाँ, आप गुरु को भी चुप कर सकते हैं, और गुरु को जब आप चुप कर देंगे तो गुरु आपके ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे, नाराज नहीं होंगे। ये गुरु मत है, अपने यहां गुरु मत है, गुरु मत। जैसा आपका धर्म है ना, वैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं। एक कुमारिल भट्ट हुए, बड़े भारी दार्शनिक, मीमांसा के विद्वान, और आपके हिंदू धर्म पर उनका बहुत उपकार है, वेदों की रक्षा करने वाले, और सैकड़ों पंडित उनके पास अध्ययन करते थे, कुमारिल भट्ट नाम था उनका। और एक दिन की बात है, अपने गुरुकुल में एक कोई पंक्ति विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते समय उनको एक पंक्ति दिखाई दी, वो लिख अत्रापिनोक्तम तत्रापिनोक्तम, अत्रापिनोक्तम तत्रापिनोक्तम। अब वो समझ भी नहीं आ रहा था कि अत्रापिनोक्तम मैंने यहां भी नहीं कहा, और तत्रापिनोक्तम मैंने वहां भी नहीं कहा, तो फिर कहा कहां? अब वो सोचने लगे, सोचने लगे, और सोचते सोचते फिर उन्होंने विद्यार्थियों को कहा रुको मैं थोड़ा बाथरूम होके आता हूं, और वो लोटा लेकर के जंगल गए निपटाने के लिए। तो वहीं पर एक प्रभाकर नाम का उनका एक शिष्य था, बहुत छोटा सा बालक था। उन्होंने देखा कि आज हमारे गुरुजी सोच में डूबे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं, और जब शौच करने के लिए जा रहे थे तब भी वो सोचते जा रहे थे, बात क्या है? अब छोटा सा बालक था वो, और ज्यादा बड़ा भी नहीं। वहां पर पहुंचे और जाकर के उन्होंने वो पुस्तक खोल के देखा कि पंक्ति है कहां, जाए गुरुजी सोच रहे हैं। उन्होंने देखा वहां लिखा था अत्रापिनोक्तम और तत्रापिनोक्तम, समझ गए ओहो इसी पंक्ति पर गुरुजी अटके पड़े हैं। हा? चलो चलो मैं थोड़ा इसमें संकेत करता हूं, वहां पेंसिल रखी हुई थी, और उन्होंने कुछ नहीं किया, अत्र अपिना उक्तम तत्र अत्रापि नोक्तम, ऐसा है ना, वहां अत्र अपि ना उक्तम, हाँ तत्र अपि ना उक्तम, उन्होंने केवल वो मास्क लगा दिया। गुरुजी आए और गुरुजी ने आज देखा खोल के, वो तो वर्म विद्वान थे, उन्होंने देखो ओहो यहां भी अपि शब्द से कहा और वहां भी अपि शब्द से कहा, पंक्ति लग गई।